अध्याय संख्या 35 प्रमापीकृत प्राप्तांक स्टैंडर्ड स्कोर्स साधारणतः किसी भी परीक्षण के परिणाम प्राप्तांकों के रूप में प्राप्त होते हैं। ये प्राप्तांक साधारण अंकगणितीय संख्याएं होती हैं जिनका अपने आप में गणितीय अर्थ के अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि राजीव के इतिहास में 78 अंक हैं तो इससे इतिहास योग्यता के आधार पर राजीव की कक्षा अथवा विद्यालय में सापेक्षिक स्थिति के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। परंतु यदि यह ज्ञात हो कि इतिहास विषय में कक्षा का औसत प्राप्तांक 54 है या प्राप्तांकों का प्रसार 30 से 80 तक है तो कहा जा सकता है कि राजीव इतिहास विषय में कक्षा के श्रेष्ठ छात्रों में से एक है। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि प्राप्तांक स्वयं में अर्थहीन तथा व्याख्या विहीन होते हैं। किसी दिए गए प्राप्तांक की व्याख्या करके छात्र की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किसी संदर्भ आधार की आवश्यकता होती है। उपरोक्त वर्णित उदाहरण में मध्यमान के ज्ञान से स्पष्ट हो गया कि राजीव के प्राप्तांक कक्षा में औसत प्राप्तांक से काफ़ी अधिक हैं। इस सूचना के आधार पर कहा जा सकता है कि राजीव इतिहास विषय में औसत छात्रों से अधिक योग्य है। इसी प्रकार से कक्षा के प्राप्तांकों की उच्चतम सीमा के ज्ञान से पता चल सकता है कि राजीव सर्वश्रेष्ठ छात्र के कितना निकट है। स्पष्ट है कि कक्षा के मध्यमान तथा प्रसार ने संदर्भ बिंदुओं का कार्य किया तथा प्राप्तांक को जो प्रारंभ में अर्थहीन था अर्थयुक्त बना दिया। प्राप्तांकों को अर्थयुक्त बनाने के लिए किसी संदर्भ आधार प्रदान करने की समस्या शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण व जटिल समस्या है। इस समस्या के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण शैक्षिक व मनोवैज्ञानिक चरों वेरिएबल्स को मापने के लिए मानक का इकाइयों का उपलब्ध न होना है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए किसी भौतिक चर जैसे लंबाई, भार आदि का उदाहरण लिया जा सकता है। उदाहरणार्थ जब हम किसी वस्तु की लंबाई सेंटीमीटर या इंचों में मापते हैं तो प्राप्त माप अर्थयुक्त होती है क्योंकि सभी व्यक्तियों की स्पष्ट जानकारी होती है कि एक सेंटीमीटर या इंच कितना होता है तथा किसी भी पैमाने से मापा जाए माप वही प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि हम किसी छात्र की बुद्धि का मापन करते हैं तो विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करने पर विभिन्न प्राप्तांक प्राप्त होंगे तथा इन प्राप्तांकों के प्रसार व आकार प्रयुक्त किए गए परीक्षण में प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की कठिनाई स्तर, प्रश्नों को अंक प्रदान करने की विधि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करेंगे। ऐसा बुद्धिमापन के लिए किसी मानक इकाई के न होने के कारण है। अपरोक्ष मापन इनडायरेक्ट मेजरमेंट की स्थिति में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। शिक्षा मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र के अधिकांश चरों की प्रकृति अपरोक्ष ही होती है जिसके कारण इन चरों के मापन में किसी मानक इकाई का होना संभव नहीं होता है। मानक प्राप्तांक का अर्थ मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर्स अपरोक्ष प्रकृति के चरों के मापन से प्राप्त प्राप्तांकों को अर्थ देना तथा उनकी तुलना करना अपने आप में एक समस्या हो जाता है। इस तरह की परिस्थिति में प्राप्तांकों को अर्थयुक्त बनाने के लिए प्राप्तांकों की मानक प्राप्तांकों में परिवर्तित किया जाता है। मानक प्राप्तांक अपने आप में अर्थयुक्त होते हैं तथा उनके उपयोग के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों की सरलता से तुलना की जा सकती है। मानक प्राप्तांक वास्तव में किसी संदर्भ समूह रिफरेंस ग्रुप के लिए विभिन्न प्राप्तांकों की सापेक्षिक स्थिति को प्रकट करते हैं। इसके लिए मूल प्राप्तांकों को किसी निश्चित मध्यमान तथा मानक विचलन वाले ज्ञात प्रकृति के वितरण के प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। मानक प्राप्तांक शब्द युग में मानक शब्द केवल इस बात का द्योतक है कि इन प्राप्तांकों का एक निश्चित मध्यमान मानक विचलन तथा वितरण प्रकृति है। मध्यमान तथा मानक विचलन के विभिन्न भिन्न हो सकने के कारण मानक प्राप्तांक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक तथा नवमानक स्टेनाइंस कुछ सर्वाधिक प्रचलित मानक प्राप्तांक हैं तथा इन्हीं तीनों प्राप्तांकों की चर्चा आगे की गई है। जड़ प्राप्तांक, जड़ स्कोर्स, जड़ प्राप्तांक सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रचलित मानक प्राप्तांक है तथा सामान्य तौर पर इन्हें मानक प्राप्तांक के नाम से ही पुकारा जाता है। जड़ प्राप्तांक बताते हैं कि प्रत्येक मूल प्राप्तांक मानक विचलन की कितनी इकाइयां मध्यमान से अधिक या कम हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जड़ प्राप्तांक किसी प्राप्तांक की स्थिति को मध्यमान के संदर्भ में तथा मानक विचलन को मापन की इकाई के रूप में लेते हुए स्पष्ट करता है। जड़ प्राप्तांक का धनात्मक चिन्ह बताता है कि मूल प्राप्तांक मध्यमान से अधिक है तथा ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि मूल प्राप्तांक मध्यमान से कम है। जैसे यदि किसी छात्र का जड़ प्राप्तांक +2 के बराबर है तब इसका अर्थ है कि उस छात्र के प्राप्तांक मध्यमान से मानक विचलन के 2 गुने अधिक हैं। यदि प्राप्तांकों के वितरण का मध्यमान 60 तथा मानक विचलन 12 है तो उस छात्र के प्राप्तांक 60 प्लस ब्रैकेट में 2 गुणे 12 अर्थात 84 होंगे। इस प्रकार से जिस छात्र का जड़ प्राप्तांक -1.5 उसके प्राप्तांक मध्यमान से 1.5 गुना कम होंगे। उपरोक्त उदाहरण में उसके प्राप्तांक 60 - 1.5 × 12 अर्थात 42 होंगे। इसी प्रकार से यदि किसी छात्र के प्राप्तांक 90 हों तथा समूह का मध्यमान 75 हो तथा मानक विचलन 15 हो तो उस छात्र का जड़ प्राप्तांक +1 होगा, जो इंगित करता है कि प्राप्तांक 90 मध्यमान से मानक विचलन की 1 इकाई अधिक है। प्राप्तांक 60 के लिए जड़ प्राप्तांक -20 होगा, जिसका अर्थ है कि मध्यमान से 2 मानक विचलन इकाई कम होगा। जड़ प्राप्तांकों के वितरण का मध्यमान 0 तथा मानक विचलन 1 बराबर होता है। मूल प्राप्तांकों को जड़ प्राप्तांक में तथा जड़ प्राप्तांकों को मूल प्राप्तांकों में परिवर्तित किया जा सकता है। मूल प्राप्तांकों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर X से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जड़ प्राप्तांकों को छोटे अक्षर z से लिखा जा सकता है। यदि मध्यमान के लिए M तथा मानक विचलन के लिए SD संकेताक्षर प्रयुक्त किया जाए तो मूल प्राप्तांकों से प्राप्तांक ज्ञात करने का सूत्र निम्नवत होगा, z = x - m/SD, जबकि जड़ प्राप्तांक से मूल प्राप्तांक निम्न सूत्र से ज्ञात किए जाएंगे, x = m+z × SD। यद्यपि जड़ प्राप्तांक पर्याप्त सूचना प्रदान करते हैं तथा मापन व मूल्यांकन के क्षेत्र में इनका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है, तथापि इन्हें कुछ असुविधाजनक माना जाता है। जैसा कि चर्चा की जा चुकी है, जड़ प्राप्तांक धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होते हैं तथा इन्हें साधारणतः 2 अंकों में लिखा जाता है। इन 2 बातों की वजह से जड़ प्राप्तांकों के प्रयोग में असुविधाएं महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य व्यक्तियों के लिए जड़ प्राप्तांक बोधगम्य नहीं होते, जिसकी वजह से सामान्य व्यक्तियों के साथ जड़ प्राप्तांकों की चर्चा करते समय संप्रेषण कठिनाई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई अध्यापक किसी अभिभावक से कहे कि आपके बालक की हिंदी भाषा योग्यता जिसे परीक्षा फल में 0 जड़ मान से व्यक्त किया गया हो संतोषप्रद है, तो संभावना यही होगी कि अध्यापक के भरसक प्रयत्नों पर भी अभिभावक इस बात को स्वीकार करने में संकोच का अनुभव करेगा। जड़ प्राप्तांकों की इन दोनों कमियों के कारण ही अन्य प्रकार के मानक प्राप्तांकों की संकल्पनाएँ ही की गई हैं। टी प्राप्तांक, टी स्कोर्स। जड़ प्राप्तांकों के प्रयोग करने पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मानक प्राप्तांकों का सुझाव विद्वानों ने दिया। इसमें से टी प्राप्तांक काफ़ी प्रचलित है। टी प्राप्तांक वास्तव में जड़ प्राप्तांकों का इस प्रकार से रेखीय रूपांतर है कि परिवर्तित प्राप्तांकों का मध्यमान 50 तथा मानक विचलन 10 हो जाता है। स्पष्टतः टी प्राप्तांक ऐसे मानकीकृत प्राप्तांक हैं जिनका मध्यमान 50 तथा मानक विचलन 10 होता है। मानक प्राप्तांकों की इस प्रणाली m = 50, SD = 10 का प्रचलन विगत कुछ दशकों में बढ़ता जा रहा है। इसमें सभी प्राप्तांक धनात्मक होते हैं तथा प्राप्तांकों को 2 अंकों में सरलता से व बिना दशमलव बिंदु के लिखा जा सकता है। ये प्राप्तांक पर्याप्त विभेदीकारी प्रसार प्रस्तुत करते हैं। इस तरह के प्राप्तांकों के लिए टी प्राप्तांक शब्द का प्रयोग शैक्षिक मापन में मुख्य प्रवर्तक ई एल थॉर्नडाइक के सम्मान में प्रयुक्त किया गया है। टी अक्षर उनके उपनाम सरनेम को इंगित करता है। टी प्राप्तांक शब्द का प्रयोग प्रारंभ में ऐसे प्राप्तांकों के लिए किया गया था जिनका मध्यमान 50 व मानक विचलन 10 हो तथा जिनका वितरण सामान्य वितरण के अनुरूप हो, परंतु रेखीय रूपांतरण के द्वारा प्राप्तांकों के वितरण की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण रेखीय रूपांतरण के द्वारा प्राप्त अंकों के लिए यह कोई आवश्यक नहीं होता कि उनका वितरण सामान्य वितरण के अनुरूप हो। इस परिस्थिति में रेखीय रूपांतरण के द्वारा प्राप्त मानक प्राप्तांकों को टी प्राप्तांक का नाम देना कुछ अनुचित प्रतीत होता है, परंतु वर्तमान समय में रेखीय रूपांतरण से प्राप्त मानक प्राप्तांकों को टी प्राप्तांक के नाम से संबोधित करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अतः हम भी ऐसे मानक प्राप्तांकों को टी प्राप्तांक के नाम से ही पुकारेंगे तथा जब इनके वितरण की आकृति को भी परिवर्तित करके सामान्य वितरण के अनुरूप कर लेते हैं तब परिवर्तित प्राप्तांकों को सामान्यीकृत टी प्राप्तांक के नाम से पुकारेंगे। जड़ प्राप्तांकों के रेखीय रूपांतरण में सभी प्राप्तांकों में कोई स्थिरांक जोड़ देते हैं जिससे ऋणात्मक प्राप्तांक धनात्मक प्राप्तांकों में बदल जाते हैं तथा प्राप्तांकों का मानक विचलन बढ़ा देते हैं जिससे दशमलव बिंदु को आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सभी प्राप्तांकों में जिस स्थिरांक को जोड़ते हैं वही रूपांतरित प्राप्तांकों का मध्यमान होता है। रूपांतरित प्राप्तांक या मानक प्राप्तांक निम्न समीकरण की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। मानक प्राप्तांक बराबर जेड गुणे इच्छित मानक विचलन प्लस स्थिरांक या एस एस बराबर जेड गुणे सिग्मा प्लस एम, जहां सिग्मा मानक प्राप्तांकों के लिए इच्छित मानक विचलन तथा एम एस मानक प्राप्तांकों के लिए इच्छित मध्यमान है। जब मध्यमान को 50 तथा मानक विचलन को 10 करने के लिए जेड प्राप्तांकों का रेखीय रूपांतरण करके टी प्राप्तांक प्राप्त करने होते हैं तब उपरोक्त समीकरण का रूप निम्नवत हो जाता है। टी प्राप्तांक टी बराबर 10 जेड प्लस 50। यदि मूल प्राप्तांकों से सीधे गणना करनी होती है तब टी बराबर एक्स माइनस एम बटे एस डी गुणे 10 प्लस 50। क्योंकि टी प्राप्तांकों के लिए मध्यमान तथा मानक विचलन निश्चित होता है इसलिए टी प्राप्तांक स्वयं में अर्थयुक्त होते हैं। जैसे यदि टी प्राप्तांक 60 हो तो इसका अर्थ मध्यमान से एक मानक विचलन अधिक होगा। यदि टी प्राप्तांक 30 का अर्थ मध्यमान से दो मानक विचलन कम होगा। जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य वक्र के अनुरूप होता है तब सामान्य वक्र की विशेषता के आधार पर टी प्राप्तांकों को और भी अधिक स्पष्ट ढंग से समझा जा सकता है। इस श्रेणी में टी प्राप्तांक 60 होने का अर्थ है कि लगभग 84% छात्रों के टी प्राप्तांक 60 से कम है, अर्थात जिस छात्र का टी प्राप्तांक 60 है उससे कम योग्यता वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या 84 है। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि जिस छात्र का टी प्राप्तांक 30 होता है उससे कम योग्यता वाले केवल 2% छात्र होंगे। सामान्य परिस्थिति में कुछ टी प्राप्तांकों का अर्थ निम्न सारणी से स्पष्ट किया जा रहा है। सारणी विभिन्न टी प्राप्तांकों की स्थिति। टी प्राप्तांक 20 मानक विचलन स्थिति 3 सिग्मा कम प्राप्तांक वाले छात्रों का प्रतिशत 0.1%, अधिक प्राप्तांक वाले छात्रों का प्रतिशत 99.9%। टी प्राप्तांक 55 मानक विचलन स्थिति प्लस 0.5 सिग्मा कम प्राप्तांक वाले छात्रों का प्रतिशत 69%, अधिक प्राप्तांक वाले छात्रों का प्रतिशत 31। टी प्राप्तांक 25 30 35 40 45 50 मानक विचलन स्थिति -2.5 सिग्मा -2 सिग्मा -1.5 सिग्मा -1 सिग्मा -0.5 सिग्मा 0 सिग्मा कम प्राप्तांक वाले छात्रों का प्रतिशत 0.6%, 2%, 7%, 16%, 31%, 50%। अधिक प्राप्तांक वाले छात्रों का प्रतिशत 99.4%, 98%, 93%, 84%, 69%, 50%। टी प्राप्तांक 60, 65, 70, 75, 80। मानक विचलन स्थिति +1 सिग्मा +1.5 सिग्मा +2 सिग्मा +2.5 सिग्मा +3 सिग्मा। कम प्राप्तांक वाले छात्रों का प्रतिशत 84%, 93%, 98%, 99.4%, 99.9%। अधिक प्राप्तांक वाले छात्रों का प्रतिशत 16%, 7%, 2%, 0.6%, 0.1%। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूल प्राप्तांकों से टी प्राप्तांकों को ज्ञात करने के लिए रेखीय रूपांतरण का प्रयोग किया जाता है तथा रेखीय रूपांतरण से प्राप्तांकों के वितरण की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब मूल प्राप्तांकों को इस तरह से रूपांतरित किया जाता है कि मानक प्राप्तांकों का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 50 व 10 हों तथा इनका वितरण सामान्य वितरण के अनुरूप हो तो इन्हें सामान्यीकृत टी प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड टी स्कोर्स कहते हैं। मूल प्राप्तांकों को सामान्यीकृत टी प्राप्तांकों में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले समूह के प्रत्येक प्राप्तांक से कम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करना होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक प्राप्तांक के लिए शतांक क्रम ज्ञात किया जाता है। तदुपरांत सामान्य वक्र सारणी टेबल ऑफ नॉर्मल कर्व की सहायता से जेड प्राप्तांक का वह मान ज्ञात कर लेते हैं जिसके नीचे वांछित प्रतिशत छात्र स्थित होते हैं। यह जेड प्राप्तांक बताता है कि दिया गया प्राप्तांक मध्यमान से मानक विचलन की कितनी इकाई ऊपर या नीचे स्थित है। इस जेड प्राप्तांक का टी प्राप्तांक में परिवर्तित करना सरल है। इसके लिए जेड के मान को 10 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में 50 जोड़ देते हैं। यही वांछित टी प्राप्तांक होगा। सूत्र के रूप में लिख सकते हैं टी प्राप्तांक t = 10z + 50। मूल प्राप्तांकों को सामान्यीकृत टी प्राप्तांकों में बदलने की विधि निम्नवत है। मूल प्राप्तांक s, मूल प्राप्तांक x 15, 20, 22, 30, 32, 40, 42, 45, 55, 58। x से छोटे प्राप्तांकों का प्रतिशत 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, 85%। जेड सामान्य वक्र सारणी -1.06, -1.04, -0.07, -0.09, -0.13, 0.13, 0.03, 0.03, 0.06, 1.04, 1.04। t = 10z + 50 34, 40, 43, 46, 49, 51, 54, 57, 60, 66। सारांश, मानक प्राप्तांक मूल प्राप्तांकों को अर्थयुक्त बनाने के लिए संदर्भ बिंदुओं का कार्य करते हैं। मानक प्राप्तांक वास्तव में ऐसे प्राप्तांक हैं जिनका कोई निश्चित मध्यमान तथा मानक विचलन होता है एवं कभी कभी वितरण की प्रकृति भी निश्चित होती है। जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक तथा नव मानक सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले मानक प्राप्तांक हैं। जेड प्राप्तांकों का मध्यमान 0 के बराबर तथा मानक विचलन 1 के बराबर होता है। मूल प्राप्तांकों को जेड प्राप्तांक में बदलने के लिए मूल प्राप्तांकों के मध्यमान को घटाकर मानक विचलन से भाग कर देते हैं। मूल प्राप्तांकों का मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है तथा इनमें प्रायः दशमलव का प्रयोग करना पड़ता है जिसके कारण सामान्य जनों के लिए इनकी बोधगम्यता कुछ कम हो जाती है। टी प्राप्तांकों का मध्यमान 50 तथा मानक विचलन 10 होता है। इन्हें प्राप्त करने के लिए जेड प्राप्तांक को 10 से गुणा करके 50 में जोड़ देते हैं। मूल प्राप्तांकों को सीधे सीधे भी टी प्राप्तांकों में बदला जा सकता है। जब मूल प्राप्तांकों को इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं कि उनका मध्यमान 50 व मानक विचलन 10 होने के साथ साथ उनका वितरण सामान्य वक्र के अनुरूप भी हो तब ऐसे प्राप्तांकों को सामान्यीकृत टी प्राप्तांक कहते हैं। नव मानकों का मध्यमान 5 तथा मानक विचलन 2 होता है। जेड प्राप्तांकों को 2 से गुणा करके 5 में जोड़ने पर नव मानक प्राप्त हो जाते हैं। नवमानक एक वक्र की सहायता से व्यक्त किए जा सकते हैं।